हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अनंत और राविया दोनों थककर एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। राविया की आंखें बंद थीं और वो गहरी सांस ले रही थी, तो वहीं अनंत का हाथ अब उसके बालों में चल रहा था, जो अभी भी थोड़े बहुत गीले थे। अनंत ने उसके माथे को अपने होठों से छूते हुए कहा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी दिवाली इतनी अच्छी जाएगी, मुझे इतनी बढ़िया पटाका बीवी मिल जाएगी और उसके साथ मेरी सुहागरात भी सेलिब्रेट हो जाएगी। कितना कुछ हो गया, अभी मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लकी हूँ। राविया में बोलने जितनी भी ताकत नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी कमज़ोर आवाज़ में कहा, हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं ऐसे बम को कभी पसंद कर सकती हूँ जो बिना दिवाली भी कभी भी फट पड़ता है। उसकी ये बात सुनकर अनंत की आंखें छोटी हो गईं। उसने हल्के गुस्से में कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कब तुम पर बिना बात गुस्सा करता हूँ? जब तुम मेरी बात नहीं मानती हो और गुस्सा करती हो, तब जवाब में मैं गुस्सा करता हूँ। राविया ने उसके सीने पर अपना चेहरा रगड़ते हुए कहा, गुस्से का जवाब कभी भी गुस्सा नहीं होता है। अनाहिदी से कुछ सीखना चाहिए आपको। मैं इस घर में इसलिए भी रहना चाहती हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे दो दो बहनें मिली हैं, जिनकी कमी मैंने पूरी ज़िंदगी महसूस की थी। उन्हें छोड़कर तुम्हें कभी नहीं जाऊँगी। अनंत को अब विहा और अनाही दोनों से जलन महसूस हो रही थी। उसने राविया की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास कर रही हो? क्या वो तुम्हें मुझसे ज़्यादा अच्छी लगती हैं? राविया ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ऑफ़ कोर्स, इसमें लगना क्या है, वो दोनों तुमसे अच्छी हैं। ये सुनकर अनंत ने गुस्से में दांत पीस लिए, पर अफसोस उसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। वहीं राविया को अब उसकी इस बेबसी पर हंसी आ रही थी। वहीं हॉल में माधवी, राधिका और निवेदिता तीनों एक साथ बैठी थीं। गुजरात में दिवाली के दूसरे दिन नव वर्ष मनाया जाता है, तो वो लोग बस शाम की पूजा की तैयारी कर रही थीं। अभी वो किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थीं क्योंकि सब लोग रात को बहुत ज़्यादा थके हुए थे। तो वहीं माधवी अपने मन ही मन सोच रही थी, ऐसा क्या किया जाए जिससे रोहान और अनाही का नया साल बर्बाद हो जाए। तो वहीं निवेदिता अपने मन ही मन सोच रही थी कि वो ऐसा क्या कर दे जिससे उनके बच्चों की ज़िंदगी का ये नया साल बेहद खूबसूरत हो जाए। अनंत और राविया का ये नया साल पहले से ही उनके साथ होने से खूबसूरत बन चुका था। अचानक ही हॉल का दरवाज़ा खटखटाया गया और एक नौकर जाकर दरवाज़ा खोलती है, तो सामने से एक वकील तेज़ कदमों से चलता हुआ अंदर आता है। उसे देखकर माधवी की आंखें छोटी हो जाती हैं, तो वहीं निवेदिता और राधिका भी हैरानी से उसकी तरफ देखती हैं। वो वकील जाकर सबसे पहले उन्हें नमस्ते करता है और फिर मुस्कुराते हुए कहता है, नए साल की शुभकामनाएं मिसेज निमानी, वो मिस्टर अनंत कहाँ हैं? आज उनकी मेरे साथ अपॉइंटमेंट थी लेकिन वो आए नहीं और अब मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, तो मैंने सोचा कि मैं खुद ही आ जाता हूँ। माधवी ने आँखें छोटी करते हुए कहा, आपको भी नया साल मुबारक, लेकिन अनंत को आपसे क्या काम था? ये सुनकर वकील ने आंखें छोटी करते हुए कहा, आपको नहीं पता, श्री अनंत और उनकी वाइफ डिवोर्स लेना चाहते हैं। ये सुनते ही माधवी की आंखें बड़ी हो चुकी थीं। उसने अपने हाथ में जो पेपर पड़ा था वो उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। तो वहीं निवेदिता ने हल्के गुस्से में कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? ज़रूर आपसे कोई गलतफहमी हुई होगी, वो तो एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं, आखिर वो क्यों डिवोर्स लेना चाहेंगे? वहीं माधवी की आंखें तुरंत ही मंदिर की तरफ गई थीं, जहां से श्री कृष्ण की मुस्कुराती हुई मूर्ति दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था वो उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं। जो जो परेशानी माधवी रोहन की ज़िंदगी में डालना चाहती है, वो पहले से उसके बेटे की ज़िंदगी में होने लगी हैं। माधवी ने डरते हुए सोफे से उठकर कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा बेटा डिवोर्स क्यों लेगा? इतना बोलकर माधवी लगभग दौड़ते हुए सीढ़ियाँ चढ़कर अनंत के कमरे में गई। तो वहीं निवेदिता और राधिका भी अपनी जगह से खड़े हो गए। उसके बाद निवेदिता ने वकील को सोफे पर बैठने के लिए कहा और एक नौकर से उसके लिए कॉफ़ी बनवा ली। अब राधिका और निवेदिता दोनों उम्मीद से सीढ़ियों की तरफ देख रही थीं, ताकि जल्द से जल्द अनंत और राविया यहाँ आकर उन्हें सच्चाई बताएं कि आखिर वो एक दूसरे से अलग क्यों होना चाहते हैं, कल तक तो सब कुछ ठीक था। माधवी लगातार अनंत के कमरे के दरवाजे को खटखटा रही थी, तो वहीं अनंत और राविया बहुत परेशान हो चुके थे, वो आखिर बिना कपड़ों के कैसे दरवाज़ा खोले, और जब हम जल्दी करते हैं तब तो वो काम और भी ज़्यादा धीरे होता है। यही सब कुछ अनंत के साथ हो रहा था क्योंकि राविया तो वहाँ से उठकर बाथरूम में जा चुकी थी। अनंत बेचारा जल्दी जल्दी कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी पैंट पहनने के बाद शर्ट पहनी, लेकिन बटन बंद करने से पहले ही जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि बाहर से माधवी दरवाज़ा खटखटाने के साथ ज़ोरों से चिल्ला भी रही थी, जैसे पता नहीं क्या हो गया हो। निवेदिता भी तेज़ कदमों से चलती हुई अब वहाँ आ चुकी थी। उसने आहिस्ता से माधवी के कंधों को पकड़ते हुए कहा, आप पहले शांत हो जाइए,
माधवी ने गुस्से में निवेदिता के हाथ अपने कंधे से झटकते हुए कहा, तुम्हारे बेटों के घर बस चुके हैं और अब जब मेरे बेटे का घर उजाड़ रहा है तो तुम मुझे शांत होने के लिए कैसे बोल सकती हो? जब तक वह सामने से आकर मुझे नहीं कहेगा कि सब कुछ ठीक है, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलेगी। इतना बोलकर माधवी ने जैसे ही फिर से दरवाजा खटखटाना शुरू किया, वहीं अनंत ने दरवाजा खोल दिया। माधवी का हाथ हवा में ही रह गया। उसने हैरानी से अनंत की तरफ देखा जो बुरी तरह हंस रहा था। उसने गहरी सांसों के साथ कहा, क्या हुआ मौन, आप ऐसे क्यों चिल्ला रही हो जैसे भूकंप आ गया हो? निवेदिता और माधवी दोनों ने ही हैरानी से अनंत को देखा, जिसके सीने पर राव्या के नाखूनों के निशान बने हुए थे और ऊपर से अनंत का थका हुआ चेहरा उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा महसूस करवा रहा था। माधवी ने जल्दी से अपना चेहरा घुमाते हुए कहा, बेशर्म, पहले तो ये शर्ट पहन अच्छे से। अनंत ने हड़बड़ाकर जल्दी जल्दी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा, आप इतनी जल्दबाजी कर रही थी, मैं तो आ ही रहा था, अब इतनी जल्दी कपड़े थोड़े पहने जाते हैं। अनंत को खुद नहीं पता था कि वो हड़बड़ाहट में क्या बोल रहा था, तो वहीं उसकी बातें सुनकर निवेदिता को अब हंसी आ रही थी और माधवी शर्म में डूबी जा रही थी। शर्ट पहनते ही माधवी ने गुस्से में अनंत का कान पकड़ लिया और फिर उसे लगभग खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। अनंत ने दर्द से चिल्लाते हुए कहा, मॉम आप ये क्या कर रही हैं, मेरा कान छोड़िए। वहीं निवेदिता ने हंसते हुए कहा, नहीं जीजी छोड़ना मत, और भी जोर से खींचना। राव्या भी जल्दी जल्दी साड़ी पहनकर अब तेजी से नीचे आ रही थी। उसने जैसे ही देखा कि माधवी ने अनंत का कान पकड़ रखा है तो वो भी अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाई। हॉल में आते ही उसकी नज़र जैसे ही वकील पर गई, उसकी हंसी कहीं गायब हो गई। तो वहीं यही अनंत के साथ हुआ था। वकील को देखते ही उसका चिल्लाना बंद हो चुका था और वो हैरानी से वकील को देख रहा था। माधवी ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है? वकील बोल रहे हैं कि तुम और राव्या एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हो, आखिर दिक्कत क्या है तुम दोनों की? कल तक तो तुम एकदम सही थे। निवेदिता ने हंसते हुए कहा, कल तक क्यों, ये तो आज सुबह तक भी सही थे। ये सुनकर राव्या का पूरा चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने अपना सिर झुका लिया।
विहा भी इतना शोर सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। उसने उबासी लेते हुए पूरे माहौल को ऑब्जर्व किया और फिर राव्या के पास आकर धीरे से कहा, आज तुम मेरी तरह टमाटर की बन गई हो, ये सब क्या हो रहा है? और तुम्हारी सास इनको कौन से दौरे पड़ते हैं जो कभी भी किसी पर भी गुस्सा करने पर उतर आती हैं? राव्या ने धीरे से विहा का हाथ पकड़कर उसे शांत करवाना चाहा, तो वहीं माधवी ने उसको देखकर अपना चेहरा वकील की तरफ किया, जो बेचारा खुद भी अब डर से कांप रहा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि उस फानम ने नहीं कहा था कि वो राव्या अब साथ नहीं रहना चाहते हैं।